आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक दो बिल कल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। वजीर दाखला अमित शाह ने इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है कि एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक बिल वफाकियत के उसूलों को कमजोर करता है। कौमी राजधानी खित्ता और मुलहका इलाकों में हवा के मयार के बंदोबस्त के कौमी कमीशन CAQM ने पूरे खित्ते के लिए ग्रैब के सख्त जाब्ते जारी किए हैं। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके भारत के तीन रोजा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। और ओमान में खवातीन के जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला चीन से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। जनाब मोदी ने कल कॉन्फ्रेंस की सदारत की। ये तीन रोजा कॉन्फ्रेंस गुज़िश्ता जुमे को शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंस में रियासतों के साथ शराकतदारी में तरक्की का एक मुश्तरक एजेंडा और खाका तैयार करने और इस पर अमल दरामद किए जाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद मरकज और रियासतों के दरमियान शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है, जिसमें तेज तर तरक्की और फरोग के लिए इमदाद बहामी पर मबनी वफाकियत और बेहतर तालमेल को यकीनी बनाना है। सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान नीज मुतालिका माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। मरकज और रियासतों के दरमियान मजीद इश्तराक को फरोग देने के वजीर आजम मोदी के नजरिए पर मबनी चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस एक बुनियादी कदम है। इस चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस में सनतकारी, रोजगार और हुनरमंदी को फरोग देने, नीज आबादी के तनासुब में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के लिए बेहतरीन तौर तरीकों और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मौजू के तहत छह शोबों मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात, देही गैर जरई उमूर, शहरी मामलात, काबिल तजदीद तवानाई और मुदव्वर मईशत पर खसूसी तवज्जो मरकूज रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि आईन मुल्क में इत्तेहाद का बुनियादी सुतून है। कसरत में वहदत को मुल्क की मुनफरिद खसूसियत करार देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियां और फैसले मुल्क में इत्तेहाद को मुस्तहकम करने की समत में हैं। वजीर आजम ने यह बात कल लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खसूसी बहस का जवाब देते हुए कही। वजीर आजम ने कहा कि उनकी सरकार यकसां सिविल कोड UCC के निफाज के लिए पुरअज़्म है, क्योंकि यह मुल्क के आईन साजों के नजरिए की बखूबी अक्कासी करता है। वजीर आजम ने मुख्तलिफ स्कीमों और इकदामात के जरिए मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए NDA हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात पर रोशनी डाली। मुल्क की तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की के बारे में वजीर आजम ने कहा कि भारत एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए पुरअज़्म है और आने वाले बरसों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा।
अब हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प, ये हर भारतीय का सपना। लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है।
एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक दो बिल कल लोकसभा में पेश किए जाएंगे। कानून के मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल आईन में तरमीम से मुतालिक 129वें बिल और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिक कवानीन के तरमीमी बिल को ऐवान ज़ेरी में पेश करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
हाल ही में हुकूमत ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने के लिए राहमवार करते हुए एक मुल्क एक इंतखाब के नजरिए को दरियाफ्त करने की खातिर तश्कील दी गई आला सतही कमेटी की सिफारिशात को मंजूर किया था। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की चेयरमैनशिप के तहत तश्कील दी गई इस आला सतही कमेटी ने सियासी जमातों और माहिरीन समेत मुतालिका फरीकों के साथ वसीतर सलाह मशवरे किए थे। इसे दो मरहलों में नाफिज़ किया जाएगा। पहले मरहले में लोकसभा और असम्बली इंतखाबात एक साथ मुनाकिद किए जाएंगे, जबकि पंचायतों और म्यूनिसिपल इदारों जैसे मकामी बल्दियाती इदारों के चुनाव आम इंतखाबात के 100 दिन के अंदर अंदर मुनाकिद किए जाएंगे। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि एक मुल्क एक इलेक्शन कानून विफाकियत के उसूलों को कमजोर करता है। नई दिल्ली में एक टीवी चैनल के जेर एहतमाम एक प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही वक्त में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात कराए जाना कोई नई बात नहीं है। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क में तीन इंतखाबात एक मुल्क एक इलेक्शन तरीके के तहत कराए गए थे।
इस देश में तीन चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 52 में सभी चुनाव साथ में हुए, 57 में कोई कारणों से चुनाव अलग हो रहे थे तो 8 राज्यों के असेंबली भंग कर दी गई और चुनाव साथ में कराए। इसके तीसरा चुनाव भी कम ओ बेस वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। एक टूटा कहा टूटा वहाँ कि जब जवाहरलाल नेहरू ने केरल में एक सरकार तोड़ दी, कम्युनिस्ट पार्टी की नामोद्रीपाद की सरकार थी उसको तोड़ दिया, और फिर इंदिरा गांधी जी ने तो सरकार तोड़ने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो मिड टर्म इलेक्शन शुरू हो गए और 71 में चुनाव जीतने के लिए लोकसभा का भी विसर्जन समय से पहले हो गया, वहां से मिसमैच हुआ है।
उन्होंने मजीद कहा कि 1952 में तमाम इंतखाबात एक साथ कराए गए थे। वजीर दाखिला ने कहा कि 1957 में अगरचे इंतखाबात मुख्तलिफ तारीखों में तय किए गए थे, 8 रियासतों की असेंबलियां तहलील कर दी गई थी जिसके सबब एक ही वक्त में इंतखाबात कराए गए। जनाब शाह ने कहा कि इसके बाद ही तीसरा इलेक्शन भी बड़ी हद तक एक मुल्क एक इलेक्शन नुक्ता नजर के तहत कराया गया। इन इल्जामात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एक मुल्क एक इलेक्शन सदारती तर्ज मॉडल पर मबनी है और बीजेपी को इससे फायदा होगा। वजीर दाखिला ने इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह कतई तौर पर गलत है।
14 में भी मोदी जी थे, उड़ीसा में चुनाव एक साथ हुआ, असेंबली में हम हार गए थे। 19 में भी मोदी जी थे, वहाँ एक साथ चुनाव हुआ, हम हार गए थे। 19 में पूरे देश में प्रचंड बहुमत मिला, आंध्र प्रदेश में हम हार गए थे। ऐसे नहीं होता है। अब जनता को क्या समझते हैं? जनता सिर निर करने की क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी में दुनिया भर की जनता में है तो भारत की जनता में है, वो अच्छे से सिर निर कर इस पर भरोसा करना चाहिए।
वजीर दाखिला अमित शाह आज अपने छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान रायपुर और जगदलपुर में कई प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह रायपुर में पुलिस परेड ग्राउंड में मुनाकिद तकरीब में छत्तीसगढ़ पुलिस को बावकार सर्ज के पुलिस कलर्स अता करेंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस को उनकी दयानतदारी, इंसानियत और गुज़िश्ता 24 वर्षों के उनके उम्दा रिकॉर्ड के एतराफ़ में ये एजाजात अता किए जाएंगे। प्रेसिडेंट कलर जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है, मुल्क की किसी फौजी यूनिट को अता किए जाने वाला आला तरीन एजाज है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अफसरान अपनी यूनिफॉर्म में ये निशान शामिल करेंगे जो उनकी उम्दा कारकर्दगी और शनाख्त की अलामत होगा। वजीर दाखिला जगदलपुर में मुतल्लिका बस्तर ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा खुसुपुर्दगी कर चुके मानवांसों से भी बातचीत करेंगे। वजीर दाखिला जगदलपुर में शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे और बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर कुंभों से भी मुलाकात करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में रानसू के शिवखोरी से कटरा यात्रियों को ले जा रही एक बस पर जानलेवा दहशतगर्दाना हमले से वाबस्ता मामले में एक मुलजिम के खिलाफ फर्ज जुर्म आयद की है। एनआईए ने ताजीरात हिंद और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत हुकुम खान उर्फ हकीम दीन के खिलाफ फर्ज जुर्म आयद की है। ये दहशतगर्दाना हमला इस साल 9 जून को अंजाम दिया गया था। इस हमले में दहशतगर्दों ने झंडी मोड़ के नजदीक यात्रियों को ले जा रही बस पर बिला इश्तेआल फायरिंग की थी, जिसमें बस ड्राइवर समेत 8 यात्री हलाक हुए थे। 41 यात्री संगीन तौर पर जख्मी भी हुए थे। एनसीआर और मुलहका इलाकों के लिए हवा के मयार के बंदोबस्त के कमीशन ने पूरे एनसीआर खित्ते के लिए ग्रैप के जाब्तों में तब्दीली की है। इसके तहत हवा की आलूदगी पर काबू पाने के लिए जो कार्रवाइयां मरहला 3 और 4 के तहत की गई थी, अब उन्हें मरहला 2 और 3 के तहत लाया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
मरहला 2 के तहत कार्रवाइयों में शनाख्तशुदा सड़कों पर खासतौर पर भारी ट्रैफिक वाली राहदारियों, कचरे के ढेर के मकाम पर रोजाना वैक्यूम स्वीपिंग की जाएगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा। اس کے علاوہ NCR ریاستوں سے آنے والی بین ریاستی بسوں، اگر وہ الیکٹرک CNG اور BS4 ڈیزل گاڑیاں نہیں ہیں تو دلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مرحلہ 3 میں دلی سرکار NCR کی ریاستی سرکاروں کو بچوں کے لیے 5ویں کلاس تک ہائبریڈ طرز پر کلاسز کا انتظام کرنا لازمی ہوگا۔ نئی دلی سے بھانو پرتاپ سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائی کے بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر آج نئی دلی پہنچیں گے۔ سری لنکا کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد یہ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہے۔ جناب دسانائی کے منگل کے روز اپنا دورہ ختم کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائیکا کا بھارت دورہ دونوں ممالک کے درمیان کثیر جہتی اور باہمی فائدے مند تعاون کو مزید مضبوط کرنے میں قابل مانا جا رہا ہے۔ دورے کے دوران صدر دسانائیکا صدر دروپدی مرمو کے ساتھ ملاقات کریں گے اور اہم دو طرفہ امور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ جناب دسانائیکا دہلی میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے ایک کاروباری تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ بودھ گیا کا بھی دورہ کریں گے، جو بھارت اور سری لنکا کے درمیان مشترکہ ثقافتی ورثے کا ایک اہم عنصر مانا جاتا ہے۔ خبرنامے کے لیے کلمبو سے میں احمد معین فاروقی۔
لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا تپیدق یعنی ٹی بی سے متعلق بیداری پھیلانے کے لیے ایک دوستانہ کرکٹ میچ میں آج مہمان خصوصی ہوں گے۔ اس میچ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے چنندہ ارکان پارلیمنٹ کھیلیں گے۔ سابق مرکزی وزیر اور حمیرپور لوک سبھا حلقے سے رکن پارلیمنٹ انوراگ سنگھ ٹھاکر کی قیادت میں ارکان پارلیمنٹ کے ایک وفد نے جناب برلا کو اس دوستانہ میچ میں شرکت کے لیے مدعو کیا۔ 20 اوورز کا یہ کرکٹ میچ، جسے ٹی بی مکت بھارت بیداری کرکٹ میچ کا نام دیا گیا ہے، نئی دلی میں انڈیا گیٹ کے نزدیک میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں آج صبح 9 بجے سے کھیلا جائے گا۔ عمان کی راجدھانی مسقط میں جاری خواتین ہاکی کے جونیئر ایشیا کپ میں آج بھارت اور چین کے درمیان خطابی مقابلہ ہوگا۔ دفاعی چیمپئن بھارت اس وقت خطاب کو برقرار رکھنے کے دہانے پر ہے۔ بھارتی ٹیم پول میچ میں چین سے 2-0 کی ہار کا بھی بدلہ لینا چاہے گی۔ بھارت نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کل جاپان کو 3-1 سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ ادھر ورلڈ اسکویش ٹیم چیمپئن شپ میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے کل پلے آف میچ میں میزبان ہانگ کانگ چین کو 2-0 سے ہرا کر 5واں مقام حاصل کرنے کے ساتھ اپنی مہم کا اختتام کیا۔ دوسری طرف بھارتی خواتین ٹیم نے اس مقابلے میں اپنا آخری میچ کھیلتے ہوئے فرانس کو 2-1 سے ہرا کر 7واں مقام حاصل کیا۔ ادھر گھریلو کرکٹ میں آج بنگلورو کے ایم چنا سوامی اسٹیڈیم میں سید مشتاق علی ٹرافی کے فائنل میں ممبئی کا مقابلہ مدھیہ پردیش سے ہوگا۔ یہ میچ دن میں 4:30 بجے شروع ہوگا۔ بلے بازی کے اعتبار سے دونوں ہی ٹیمیں مضبوط ہیں۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے ملک کے شمال مغربی اور وسطی علاقوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران شدید سردی کے حالات جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ IMD کے مطابق مدھیہ پردیش کے الگ الگ مقامات پر آج سرد لہر چلنے کے امکانات ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے لوک سبھا میں آئین کے 75 سال کے سفر پر محیط 2 روزہ خصوصی بحث سے متعلق خبر کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے آئین کو بھارت کے فخر کی علامت قرار دیا۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیش دھنکڑ نے انڈین پوسٹ اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن اکاؤنٹس اینڈ فائنانس سروس کی 50ویں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت نہ صرف نظام بلکہ اظہار اور مذاکرات کے توازن سے پروان چڑھتی ہے۔ اس خبر پر روزنامہ پرتاپ نے خصوصی توجہ مرکوز کی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے ون نیشن ون الیکشن بل کے حوالے سے خبر دی ہے کہ مرکزی وزیر قانون ارجن رام میگھوال پیر کے روز اسے لوک سبھا میں پیش کریں گے اور بحث سے پہلے اس اتفاق رائے کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا۔ بی جے پی کے سینئر رہنما لال کرشن اڈوانی کی طبیعت بگڑی، اسپتال میں داخل، اس خبر کو آج کے بیشتر اخبارات نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے۔
اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں چیف سیکرٹریز کی 4th قومی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق 2 بل کل لوک سبھا میں پیش کیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق بل وفاقیت کے اصولوں کو کمزور کرتا ہے۔ قومی راجدھانی خطہ اور ملحقہ علاقوں میں ہوا کے معیار کے بندوبست کے قومی کمیشن CAQM نے پورے خطے کے لیے گریپ کے سخت ضابطے جاری کیے ہیں۔ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائے کے بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر آج نئی دلی پہنچیں گے۔ اور عمان میں خواتین کے جونیئر ایشیا کپ ہاکی کے فائنل میں آج بھارت کا مقابلہ چین سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.